دیکھتے ہم تفسیر سورة البقرة. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، تو آگے سے ان کا جواب پتا کیا ہوتا؟ بھئی آؤ قرآن جو کہتا ہے اس طرف آؤ، حدیث جو کہتی ہے اس طرف آؤ، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، یہ کام نہیں کرنا، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں آگے سے؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبا، ہم تو وہی کریں گے جس کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. دیکھیں نا، مشرکین مکہ کے ساتھ تو یہ تھا ہی معاملہ، وہ کہتے تھے ہم نے تو اسی مذہب کے پر ہمارے باپ دادا تھے، آپ ہمیں اور کچھ سکھانے آ گئے، ہم نے تو نہیں چھوڑنا جس پہ ہمارے باپ دادا تھے اس سے ہم ہٹ جائیں. ابو طالب نے لاسٹ مومنٹ تک کیوں نہیں اسلام لائے تھے؟ انہوں نے کہتے تھے لوگ عورتیں کہیں گی کہ دیکھو مرتے وقت ڈر گیا تھا، تو اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. یہ ایک بہت بڑی پیر کی بیڑی ہوتی ہے، ایک بہت بڑا انسان کو جو چیز روکتی ہے نا وہ یہ کہ ہمارے باپ دادا اس چیز کے اوپر، یہ صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے. اور آج بھی آپ کسی سے کہہ کے دیکھیں، کسی سے کہہ کے دیکھیں آپ ذرا آپ اس طرح شادی کریں، یا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ چالیسویں اور یہ برسیاں اور یہ کیوں کر رہے، وہ کہتے ہیں لوگ ہمارے تو ہمیشہ سے ہوتا رہا، ہمارے تو گھروں میں یہ ہوتا ہے، ہمارے تو سارے کرتے ہیں، ہماری تو امی بھی یہ کیا کرتی تھی، کنڈے بھی کرتی تھیں اور وہ یہ بھی کرتی تھی، اور آپ ہمیں کیا نئی باتیں بتانے آ رہے. اگر ان کو کہنا قرآن اور حدیث میں یہ لکھا ہے یا یہ چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تو پھر ان کا جواب دیکھیں کیا ملتا آپ کو، جواب پوچھ کہہ کے دیکھیے گا. دے ڈونٹ کیئر قرآن میں ہے حدیث میں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، بس ہمارے تو بڑے یہ کرتے تھے. اور یہ سب سے بھونڈا ایکسکیوز ہے، سب سے بیکار ایکسکیوز یہ. اس لیے اگر دیکھیں دنیاوی معاملات میں ہم کبھی نہیں وہ کرتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. اب ہمارے باپ دادا کیسا پہنتے تھے، اتنے سمپل ان کی لائف تھی، ان کے گھر کتنے سمپل تھے، وہ ایسا تو ہمارے کچھ بھی نہیں ہے جو ہم کاپی کرتے ہیں. لیکن خاص طور پہ دین میں ضرور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے دین میں ہمیں ان کی پیروی یاد آ جاتی. اب دیکھیں کسی کو کہہ کے دیکھیں کہ آپ نا یہ آپ یہ کرتی ہیں گیارہویں، تو گیارہویں نہ کریں، یہ تو دیکھیں یہ تو سنت کا طریقہ ہی نہیں. ان کو کہیں گے نہیں نہیں میری تو امی بھی کھیر پکاتی تھی، میری دادی بھی کھیر پکاتی تھی، میری فلانا بھی کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اولو کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، وہ ان کے پیچھے اندھا دھند چلتے ہی رہیں گے، چاہے ان کے باپ دادا کو کوئی عقل نہیں تھی اور وہ ہدایت پہ ہی نہیں تھے. اور واقعی اگر دیکھیں تو دین کے معاملے میں جو پچھلے ہیں، الا ماشاء اللہ کسی کسی کے خاندان ہوں گے جو کہ دینی کوئی خاندان سے ہوگا، لیکن زیادہ تر لوگ آپ دیکھیں کہ ان کے باپ دادا کو کوئی دین کا ایسا نالج نہیں تھا، کوئی وہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے اس طرح جیسے آج لوگوں کو اپرچونیٹی مل رہی ہے، نہیں انہوں نے اس طرح سے سیکھا تھا، لیکن کہتے ہیں نہیں ہم نے اندھا دھند فالو وہی کرنا، چاہے وہ غلط کر رہے تھے، نہیں وہ بھی تو ایسا کرتے تھے، تو کیا ہو گیا اگر ہم بھی کریں گے؟ آپ کا مطلب ہے وہ سارے غلط تھے؟ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں وہ سارے جہنم میں چلے گئے؟ تو اسی طرح وہ مشرکین مکہ کرتے تھے کہ پھر وہ ہمارے باپ دادا کیا جہنم میں چلے گئے جو وہ یہ بت پرستیاں کرتے گئے. آج بھی پوچھتے ہیں کیا انہوں نے پھر غلط کی، یعنی اب آپ کہیں گے ہاں وہ غلط کرتے تھے تو پھر وہ آپ کا سر توڑیں گے کہ آپ نے ہمارے باپ دادا کو یہ کہنے کی کیسے ضرورت کرتی. اور ویسے ہم کہتے رہیں گے کہ امی آپ کو کیا پتا، وہ تو ان کو کیا پتا، آپ تو پرانے لوگ ہیں ہمیں سے زیادہ پتا. لیکن دین کے معاملے میں نہیں ہم وہ چھوڑتے چیزیں، وہی ہم اندھا دھند لکیر کے فقیر اس کے اوپر ہی چلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اب دیکھ لیں ہم سب لوگ جتنے بھی ہیں، الا ماشاءاللہ شاید ہی کوئی ہو جس کے پشتوں تک سے سب مسلمان آ رہے ہیں، زیادہ تر جو لوگ سب کانٹیننٹ کے ہیں، انڈیا پاکستان کے جو لوگ ہیں، ان کے آبا و اجداد پیچھے سے تو ہندو ہی تھے نا، غیر مسلم ہی تھے نا، اس کے بعد ہی کوئی مسلمان ہوا ہوگا، پہلا کوئی آدمی مسلمان ہوا ہوگا جس سے آگے پھر اسلام چلتا رہا. اگر وہ پہلا آدمی بھی کہتا कि नहीं जी मैंने तो वही करना जो मेरे आबाऊ अजदाद करते रहे, तो हमारे तक इस्लाम पहुंचता। मैं तो कहती हूँ हम सबको दुआएं करनी चाहिए उस पहले इंसान के लिए जो इस्लाम लाया होगा, पता नहीं कितनी उन्होंने कुर्बानी दी होगी, कितना उनके लिए मुश्किल होगा। तो आज हम कुर्बानी देने से बच गए, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, उसी वक्त में तो कोई ईमान लाया होगा ना। तो वो जो भी होगा अल्लाह ताला उनके लिए हमें सबको सदका जारिया बनाए, ये देखो कितनी बड़ी बात है। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर वो गलत करते रहते तो आज हम तक सही बात कहां से पहुंचती। इसलिए अगर उनकी अगर कोई पता चल भी जाए कि हमारे बाप दादा कुछ गलत कर रहे थे तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका बवाल बढ़ेगा, उनके ऊपर मुसीबत बढ़ेगी, उसको बल्कि चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि वरना क्या होगा, जैसे काबिल ने कत्ल किया तो आगे जितने भी लोग कत्ल करते रहेंगे उसका सारा का किसको जाएगा, वो काबिल के ऊपर, उसका हर कत्ल का एक हिस्सा गुनाह का काबिल पे भी होगा। इस तरह अगर किसी के आबाओ अजदाद कुछ गलत काम करते रहे हैं तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, वहां पे स्टॉप कर दे, ताकि ये तो गुनाह का सिलसिला तो ना चलता रहे। लेकिन हम इसमें प्राउड होते हैं कि नहीं देखो हम उनकी ट्रेडिशन लेके आगे चल रहे हैं, इस्लाम या दीन ट्रेडिशंस के ऊपर नहीं चलता। इससे हमें पता चलता है अंधाधुंध हमने किसी को फॉलो नहीं करना, अंधे होके ब्लाइंडली, चाहे वो बाप दादा है, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई इमाम है, चाहे कोई भी है, प्रूफ पूछो यार, ये कोई प्रूफ नहीं है कि नहीं हमारे बड़े करते थे, ये पूछो ये कहां से हमें इसकी दलील मिलती है। अगर कुरान और हदीस से कोई दलील मिलती है तो फिर हम ये करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सिंपल एज दैट, अगर आप अपना मयार कुरान और हदीस रख लेंगे तो कोई मसला ही नहीं। और अगर मयार ये है कि बाप दादा करते थे तो फिर बाप दादा की गलतियां तो चलती रहेंगी आगे, और वाकई बाप दादा में से काम ही है, जो आप अपनी पिछली जनरेशन को देख लें उनके पास दीन का कितना इल्म था, इल्ला माशाल्लाह किसी के होंगे भी लेकिन ज्यादातर के क्या दीन का इल्म है। अगर वो कहेंगे कि तुम लोगों ने हिजाब नहीं ले, अगर वो कहेंगे कि तुम लोग ये क्यों ये सूद और इसकी इतनी में पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और क्या तुमने ये शुरू किया हुआ कि ये हराम है और ये नहीं है और ये क्या तुमने, तो क्या उनके पैरवी शुरू कर देंगे? नहीं, सिर्फ पैरवी उसकी करनी है जो कुरान और हदीस से बात करे, जो खुद हिदायत पे। यहतदून का मतलब क्या है, यानी कि वो खुद हिदायत पा चुका हो, वो खुद दीन को फॉलो कर रहा हो, उसको तो आप फॉलो कर सकते हैं। ये नहीं मतलब है कि आबाओ अजदाद को बिल्कुल ही आप जीरो कर दें और कहें कि नहीं जी उन जो वो कहते हैं उससे अलग करना, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि आप देखें पिछले पारे के एंड में हमने देखा था याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को उन्होंने जब बुला के पूछा था कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने क्या कहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आबा की, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम ने जिस खुदा की पूजा की थी हम भी उसी की इबादत करेंगे, तो वो तो अपने आबा के खुदा की इबादत कर रहे थे ना। तो आबा अगर हिदायत पे हैं तो कोई हर्ज नहीं, फिर तो आप जाहिर अल्लाह की बात को ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आबा खुद हिदायत से हटे पड़े, आपको आज हिदायत मिल गई है और आपको पता चल गया कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन फिर भी आप उसी को फॉलो किए जाए तो भटकेंगे ना। फिर देखिए आबाओ अजदाद का मतलब ये नहीं होता कि वो अकली कुल है, उनके पास वो पायटी की इंतहा हो गए क्योंकि वो आबाओ अजदाद बन गए, वो भी इंसान ही है हमारी तरह, उनसे भी गलती हो सकती है। आज अगर एक कादियानी है तो उसका बच्चा कादियानी है, एक ईसाई है तो उसका बच्चा ईसाई है, एक यहूदी है उसका बच्चा यहूदी, क्योंकि वो अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करनी, खुद नहीं सोचना कि ये क्या सही कह रहे हैं या नहीं। तो जरूरी है कि इंसान देखे कि मेरे आबाओ अजदाद जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं, फिर मैं उसको फॉलो करूं। मतलुल्लदीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, कुफर की बात किसकी कही जा रही है, जो पिछली आयत में आ रहे हैं, जो ब्लाइंड फॉलोइंग कर रहे हैं आबा की, और जब आबा को हिदायत खुद मिली नहीं थी और ये उनके रास्ते पे ही चल रहे हैं, तो उनकी मिसाल ऐसे काफरों की मिसाल कैसी है, का मतलुल्लजी यनइकु, ये एक ना अल्लाह ताला ने तमसील दिया, यानी एक एक मिसाल के साथ बताया कि इन ये किस तरह से है, जैसे अल्लदी यनइकु जो पुकारता है, बिमा ला यस्माउ उसको जो नहीं सुनता, इल्ला दुआ व निदा, वो उसको पुकार रहा है जो सिवाय दुआ और निदा के, दुआ कहते हैं दुआ निदा दोनों, पुकार और आवाज फर्क दोनों में क्या है,
कहा जाता है कि दुआ जो है वो बामानी है, और निदा जैसे ओ ओ जैसे हम ऐसे कहेंगे, अब ओ का कुछ माना नहीं है ना। और ये भी कहा जाता है कि दुआ और निदा में ये फर्क है, दुआ करीब से किसी को बुलाना, और निदा जो है वो दूर से किसी को बुला रहे हैं आप, तो वो उसको निदा कहते हैं। बाहर क्या है, दोनों आवाजें हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क है दोनों में, ठीक है। ये इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप, अच्छा आप एक चरवाहे को सोचिए, मैं आपको फिर उससे समझाती हूँ या आपको उससे समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, कि एक चरवाहा है, ठीक है। अब वो बकरियों को बुला रहा है, अब वो अपनी बकरियों को बुला रहा है, बुला रहा है उनको, अगर वो बुला के आवाज में क्या कह रहा है, इधर आओ तुम्हें जिबा करूं, इधर आओ मैं तुम्हें हलाल करने वाला हूँ। बकरियों को क्या समझ आ रही, कुछ समझ आ रही उनको? कुछ समझ नहीं, उनको बस पता कि ये हमें बुला रहा है, आवाज है एक लेकिन अंदर उसके कंटेंट क्या है वो नहीं समझ आ रही। या उनको कह रहा आओ मैं तुम्हें चारा डालूं, आओ चलो घर चलना, कितनी हिकमत की बातें कर ले, या हाँ ओए कर करके उनको करे, दोनों में से कुछ भी कर लेगा ना, बामानी कोई बात कर दे बड़ी हिकमत वाली बात कर दे, या फिर उनको पुकार रहा है वैसे ही उनको हाँक लगा रहा है, उन बकरियों के लिए वो क्या है, सिर्फ एक आवाज है बस, उससे आगे उनको कुछ नहीं समझ। ये हमें हलाल करने लगा है, या हमें ये कुछ चारा डालने लगा है, ये हमें कोई घर ले जाने लगा है, या कहीं से फेंकने लगा है, या हमारे साथ क्या करेगा, कुछ नहीं समझ में। इसी तरह इन लोगों की मिसाल है, यानी आप उनके सामने इतना बताओ, कुरान समझा रहे हो, हदीस बता रहे हो, कुछ कर, उनके सर पे जूं तक नहीं रेंगती वो, उनको पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या क्या रहा है, ये हमारे लिए कितनी फलाकी बात कर रहा है, या कि उनके लिए बस आवाज ही है। एंड ऑफ द डे क्या वो वहीं के वहीं खड़े होते हैं। कभी आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ा, जो जितना मर्जी उनको समझा ले, कितनी आप दलाइल दे रही, उनकी नहीं समझ में आती बात, वो वहीं के वहीं होते हैं। नहीं, हमने तो बस वही करना है जो हमारे बाप दादा करते थे, वो कोई गलत तो नहीं करते थे। अल्लाह तआला ने फरमाया सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला याकिलून, वो क्या है, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, तो वो अकल नहीं रखते। बहरे सबसे पहले कहा जाता है, क्योंकि जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा असर करती है ना, पढ़ना भी इतना असर नहीं करता जितना सुनना असर करता है। ये जो आपके कानों के थ्रू जाता है ना, आप वो ही चीज आप पढ़ के देख लें। अच्छा आप कभी ऐसे करिएगा, एक लेक्चर सुन के देखें और पढ़ के देखें, आप देखेंगे जो आपने सुना है ना वो ज्यादा असर करता है। तो वो बहरे हैं, यानी इनको आप बताते जा रहे हैं वो कुछ नहीं सुन रहा, बहरे यानी कि वो वैसे डेफ हैं, डेफ नहीं है मगर ये बातें नहीं उनको सुनती बस। और वो क्या है, गूंगे हैं, यानी हक बात बोलते नहीं, वैसे हर बात बोलेंगे लेकिन जो सही बात है वो नहीं बोलते। और अंधे हैं, वैसे उनको हर चीज नजर आती है लेकिन आपको मैंने क्या बताया था कि दो चीजें हैं, दो आयात हैं जो निशानियां हैं अल्लाह की, जिनसे आप अल्लाह को पहचानते, एक कुरान में आयात और एक कायनात में आयात। तो चलो अगर आप किसी से सुन के नहीं समझते, कोई आप कोई कोई आपको बता रहा है आपको नहीं वो सुननी, तो कम से कम खुद देख के ही इंसान को समझ आ जाती है, वो देखते भी नहीं है, वो उसमें भी अंधे हैं। आप देखिए ना, एक बंदा है अगर उसको हेल्प चाहिए हो तो वो चीख के बोलता है कि मुझे हेल्प करो हेल्प करो, अगर वो वैसे ही चीख नहीं सकता तो कुछ कुछ देख के अपना रास्ता मुतय्यन कर दे, नहीं तो उसको कोई मतलब कोई उसकी कोई मदद करने के लिए आता है वो कुछ बोलता है तो उसको वो सुनाई दे देता है तो चलो उसकी तरफ चला जाए। दो तीन तरीके हैं ना इंसान के मदद हासिल करने के, या तो अपना खुद रास्ता देख के चला जाए, नहीं देख सकता कुछ कोई किसी की सुन ले और रास्ता पा ले, नहीं वो भी पाता तो को किसी को पुकार ही ले कि आओ आओ मेरी हेल्प करो, जब तीनों ही चीजें नहीं है तो वो तो लॉस्ट है ना। तो हम ला या किलून, वो अकल नहीं रखते, यानी वो सोचना ही नहीं चाहते। इसलिए कि अगर अकल इस्तेमाल करे ना इंसान को, अल्लाह ताला ने अकल ऐसी चीज दी है, बहुत जबरदस्त चीज है जो इंसान के पास है, जानवरों के पास अकल नहीं है, इसलिए वो जानवर है और हम इंसान है, यही तो फर्क है। और अगर इंसान ने भी अकल इस्तेमाल करनी छोड़ दी तो फिर क्या है, वो जानवर ही है ना। बल्कि फरमाया कुरान पाक में आता है बल हम अदल, बल्कि ये उनसे भी ज्यादा है। उलाए का कल अनाम, ये तो चौपाइयों की तरह है, बल हम अदल, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। क्यों उनसे ज्यादा क्यों गए गुजरे, उनके बराबर क्यों नहीं है? इसलिए कि चौपाए भी देखो ये बेचारी बकरी है या कुछ है, और उसको नहीं समझ आ रही चरवाहे की बात, लेकिन वो मानती तो है ना, चल पड़ती है उधर को जिधर को वो हाँ करा। इंसान तेरा तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है, अगर नहीं समझ आ रही कुछ नहीं तो फिर भी इंसान सोच लेता मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन मेरी अल्लाह की बात है इसमें जरूर कोई भलाई होगी, मैं तो करूंगी तो यही चाहे मुझे नहीं भी समझ आ रही। तो तुमसे तो जानवर ही अच्छा है, अगर नहीं समझ आ रही कर तो रहा है ना वो जो काम उसको कहा जा रहा है करने को, तुम तो करते भी नहीं। बल हम अदल, उससे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। तो जो अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, सुनना, ये देखे ये सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जो जहन्नुम के अंदर होंगे, जब उनसे पूछा जाएगा तुम जहन्नुम में क्यों, तो कहते क्या, वकालू लव कुन्ना नस्मा हुआ नाकिलू मा कुन्ना फी अस्हाबे साईर, वो कहेंगे काश हम दुनिया में सुन लेते और यहाँ कोई अकल ही इस्तेमाल कर लेते। किसी किसी की बात अगर नहीं सुननी चलो अपनी अकल इस्तेमाल करके देख लो, खुद की अकल आपको गाइड कर देगी ये एक खुदा है, तो हम कुछ तो करते, लेकिन ना हमने सुना तो ना हमने अपनी अकल इस्तेमाल की, तो इसलिए आज हम यहाँ पे, अगर हम कर लेते तो यहाँ ना होते। इसे हम लोगों को कहते हैं सुन लो एटलीस्ट, सुन लो एटलीस्ट, कहते हैं हमने सुनना भी नहीं, कान ही अपने बंद कर लेते हैं। अगर ऐसों का आप क्या कर सकते हैं जो सुनना भी ना चाहे। आज वो वक्त आ गया है कि अल्लाह की बात को सुनना भी गवारा नहीं है, तो फिर कहाँ से हिदायत मिलेगी? कहते हैं हम पहले से हिदायत याफ्ता है, वही शैतान ने ऐसा चाबी दे दी है ना, तो तुम्हें हिदायत की क्या जरूरत है, तुमने कोई कुरान से हिदायत लेनी? तुम वो इतने ही बेवकूफ हो कि तुम कुरान से हिदायत लोगे, तुम्हें तो पहले ही हिदायत मिली हुई है, भला बचपन से तुमने नहीं कुछ पढ़ा, तुम्हारे घर वालों ने नहीं कुछ बताया, उन्होंने सब कुछ बताया हुआ तुम्हें, मुसलमान घराने में पैदा हुए हो ना, तो बस ठीक है तुम्हें सब आता है, अब ये तुम्हें क्या सिखाएंगे? इंसान बड़ा मुतमईन होकर बैठ जाता है, हाँ, मैंने क्या सीखना है कुरान से, कोई नई बात मुझे सिखाएंगे, सब आता है हमें। कितनी जबरदस्त थपकी है जो शैतान देता है, तो खुद ही अपने आप को बहरा बना लिया, गूंगा बना लिया, अंधा बना लिया, तो फिर कहाँ से हिदायत पाएंगे? या अय्युह लदीना आमनू, फिर अब ईमान वालों से कहा जा रहा है। देखें पहले किसको कहा गया, पूरी इंसानियत को, अब किसको कहा जा रहा है, ईमान वालों को। कुलू मिन तय्यिबात, खाओ पाकीजा चीजों में से। अब क्यों नहीं कहा हलाल, इसलिए कि ईमान वाला खाएगा ही हलाल, उसको सिर्फ तय्यिब का कहा गया, तुमने तय्यिब भी देखना। मा रज़क़नाकुम, जो हमने रिस्क दिया तुमको, यानी जो भी तुम्हारे पास रिस्क है ना, ये याद रखना, क्योंकि वो अल्लाह को मानता है ना, ये ना भूलना कि रजक ना हमने रिस्क दिया तुमको, ये नहीं कि मैंने अपनी कमाई की, मैंने मेहनत की, मैंने दिन रात लगाई है तो ये फिर कारोबार मेरा इतना बड़ा है, मैंने इतनी जॉब में मेहनत की है ना तब इतने पैसे मिले, नहीं, रजक ना कुम, हमने रिस्क दिया तुमको, इसमें से तुम खाओ। आपको पता है कुरान पाक में ये जो आपने अन्नास का भी पढ़ लिया कि अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को ये फरमाया कि तुम खाओ हलाल और तय्यब, ईमान वालों को भी फरमाया कि तुम तय्यबात में से खाओ, और पैगंबरों को भी फरमाया या अय्युह रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वामलु सालिहात, ए रसूलो खाओ तय्यबात में से और साले अमल करो। तो रसूलों को अलग हुक्म है, ईमान वालों को अलग हुक्म है, पूरे इंसानों को भी हुक्म है, तो इसलिए ये हुक्म सबके लिए सेम है, ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं सबके लिए। और उसके बाद क्या करो, वशकुरू लिल्ला, शुक्र अदा करो अल्लाह का, क्योंकि सार इंसानों को क्यों नहीं सारों को कहा गया शुक्र, क्योंकि इंसान जो है ना खाएंगे तो अल्लाह का ही, वो भी अल्लाह का ही खाएंगे, वो शुक्र नहीं अदा करेंगे, सारे नहीं करेंगे। तो ईमान वालों से कहा, ईमान वालों तुम उनसे डिफरेंट हो, तुमने शुक्र अदा करना है अल्लाह का, इनकुन तुम या हो ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो, और आबुद का मतलब आपको एक और क्या बताया था, गुलामी, अगर तुम अल्लाह के गुलाम हो ना सिर्फ, तो तुम्हें फिर समझ होगी कि मैंने क्या खाना है और मैंने खा के क्या करना है, मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए खाने के बाद, शुक्र।
एक मोमिन से मतलूब क्या है? शुक्र। शुक्र क्या है? मैंने बहुत दफा आपको शुक्र का बताया हुआ, मैंने आपको बताया हुआ शुक्र दिल से भी एतराफ करना कि अल्लाह ने दिया, ये मान लो कि ये अल्लाह ने दिया, मेरी अपनी नहीं, मैंने इतनी अच्छी कोई कुकिंग नहीं की कि इतना जबरदस्त खाना बन गया, अल्लाह ने करा दिया, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। जुबान से भी यही अदा करो कि अल्लाह ताला का ही करम, और आपके बॉडी पार्ट्स भी उसके मुताबिक शुक्राने में अल्लाह की फरमाबरदारी करें। तो बेसिकली शुक्र नाम है, शुक्र को अगर दूसरा नाम दिया जाए ना, तो शुक्र नाम है अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का। हम फरमाबरदारी करके दिखाते हैं शुक्राने के तौर पर, अल्लाह हमने रियलाइज किया है कि तूने हमें ये सब कुछ दिया है, इसलिए हम तेरी ही मान रहे हैं, समझ आई। और अगर इंसान खाए किसी का और फिर गुण गाए किसी और के और माथे टेके किसी और के सामने और तरीकों पे चले किसी और के और हलाल और हराम पूछे किसी और से, तो मुझे बताएं ये क्या शुक्रगुजारी है? नहीं, आपका बच्चा आपको कहे कि मैं जी आपका बड़ा थैंकफुल हूँ आपने में, और उसके बाद क्या करूं जो आप कहती हूँ उसे उलट करता है, तो ये क्या थैंकफुलनेस है? छोटी सी मिसाल से देख लें, यानी हम कहें ना नहीं मैं तो बड़ी शुक्र गुजार हूँ अल्लाह की, लेकिन अल्लाह का कोई हुक्म आ जाता आप मानते ही नहीं, ये कौन सी शुक्र गुजारी है भाई? ये शुक्र गुजारी तो नहीं, तो ना शुक्री है। शुक्र गुजारी है कि इंसान फिर झुक जाए, जो अपना मोहसिन है उसके आगे सर ना उठाए। आप समझते हैं कि अल्लाह हमारा मोहसिन है, उसने हमारे पर एहसान किया है ये जिंदगी दे के, ये इतनी नेमतें हमें अता करके जिनको हम गिन भी नहीं सकते। तो शुक्र पता ही तब चलेगा कि जब आप फरमा बरदारी करेंगे अल्लाह की, समझ आई। ये शुक्र गुजारियां नहीं है जो मुंह से बोले जाए, हाँ नहीं नहीं हम शुक्र करते हैं बस शुक्र है शुक्र है, और उसके बाद नाफरमानियों में भी आगे निकले, ये नहीं शुक्र है। हमारी शुक्रगुजारी का हाल देखें कि हम जितना हमें अच्छा अल्लाह ताला खिलाता है ना, उतनी हमारी नमाज ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, उतना ही हम शुक्र ज्यादा करें। लेकिन आप देखेंगे कि जिस दिन हम कोई दावत खा के आए, यहाँ कोई हम शादी पे चले जाएं, उसके बाद हमारी नमाज कैसी होती है? बेस्ट होती है कि जो पहली थी उससे भी गई गुजरी, जमाइयां आ रही हैं, सर घूम रहा है, और फजर तो पता नहीं फिर पढ़ी जाती भी है कि नहीं, तहज्जुद तो वैसे ही जो पढ़ते भी हैं वो भी ना पढ़ी गई। तो हम तो जितनी ज्यादा हमें नेमत मिलती है तो हम उतनी नाशुक्री करते हैं, हम लेट आए थे अब क्या फजर पे तो उठ नहीं सकते। तो शुक्र गुजारी ये नहीं है, अल्लाह ताला ने नेमते दी हैं तो फरमाया कि अब नेमते देने वाले को भी याद रखना। और ये भी ना शुक्रिया है कि इंसान खाए किसी का, वो उसकी नियमतों को इस्तेमाल भी करे, इंजॉय भी करे, फिर उसके बाद उसका ये भी ना कभी करे कि उसका उनका जिक्र करे, बल्कि हमेशा रोता रहे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमें तो कुछ बचता ही नहीं है, हम तो बस लूटे गए मारे गए, हाय 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 हाय, बस हर वक्त हाय हाय करता रहे, ये भी ना शुक्रिया है। अल्लाह ताला ये नहीं देखना चाहता। तुम खाते हो पीते हो तो आप शुक्र अदा करो कि शुक्र है अल्लाह ने बहुत दिया है, हमारी औकात से बढ़ के दिया है। आप घर में एक रोटी भी खाते हैं ना, तब भी शुक्र इस तरह से अदा करें, ये नहीं कि हाय भाई महंगाई बहुत हो गई, हाय ये नहीं, हाय नहीं वो, हाय ये हाय हाय तो सही नहीं है। हाय हाय का मतलब ये है कि हमें नहीं कुछ मिला, आप अल्लाह की शिकायत कर रहे हैं। और इंसानों को इतना कुछ मिलने के बावजूद उनका ये हाल होता है कि जो नहीं मिली होती ना चीज उसी का रोना रोते रहते हैं। अब आप देख लें हमारे यहाँ अक्सर लोग इतना रोना रोते हैं, बस नहीं कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं हमारे पास कुछ नहीं, फिर उसके बाद उनकी शादियां देख लें, फिर उनके पार्टीज में उनके ड्रेसअप होना देख लें, फिर उनके और कई चीजें देख लें, तो आप कहते हैं कि ये किस किस्म की फिर नाशुक्री, हर वक्त रोते भी रहना और उसके बाद आप देखें हर तरह की चीजें भी आपके पास हैं, ये नाशुक्री के कलिमात नहीं बोलने चाहिए, हमेशा शुक्र गुजार रहे। अब कई लोग कहते हैं ये हमारे गरीब खाने पे आप आए, भाई गरीब खाना क्या जब देखे हो जाएगा तो अच्छा भला घर है, नहीं वो कहते हैं ये हमारी आजी है, तो ये आजी के अल्फाज नहीं, नाशुक्री के अल्फाज है, गरीब खाना नहीं, शुक्र है अल्लाह ने हमें दिया, ये गरीब खानी है हमारे। तो ये इस किस्म की आर्टिफिशियल आजली आजी की कोई जरूरत नहीं है, ये भी एक बनावट है सिर्फ। इन कुन तुम इया हुताबुन, अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो तो तुम ये काम करो। इसका मतलब ये भी इबादत है कि आप तय्यिबात में से खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें उसके बाद खाके। अल्लाह ने खाने से मना नहीं किया, मगर ये बात अल्लाह को अच्छी नहीं लगती जब इंसान खा के फिर ना शुक्रिया करता, फिर कहता है हाय इतना खा लिया, हाय इतना या। ओ भाई आपने खाया भी तो अपने आप पे जुल्म किया जब ज्यादा खा लिया, फिर उसके बाद भी हाय हाय करते रहना।